अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़िक्र नज़र सहा टीवी लंदन स्टूडियो से, और मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन महदी। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और अपने मोज़िज़ मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस्लामिक बैंकिंग और दूसरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिवायती बैंकिंग का मुतबादिल हैं, और मग़रिब में रहने वाले मुसलमान ख़ास तौर पर किस तरह इन प्रोडक्ट से, इस्लामिक प्रोडक्ट से या इस्लामिक बैंकिंग से इस्तफादा हासिल कर सकते हैं। मेहमानों का तारुफ, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम बाबर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम बाबर।
वालेकुम अस्सलाम मेहदी।
और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं शब्बीर रज़वी, जो कि सीनियर फाइनेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़वी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
बाबर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। बींग एन एक्सपीरियंस्ड इस्लामिक बैंकर, आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि क्या फ़र्क है इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग, या जिसे रिवायती बैंकिंग
जी
कहा जाता है। और फिर मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को बताइएगा कि किस तरह मग़रिब में ख़ास तौर पर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो इन प्रोडक्ट से फ़वाद हासिल कर सकते हैं। जी
पहली बात तो जो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है वो रिवायती बैंकिंग से बहुत मुख्तलिफ है। उसकी बुनियादी जो फ़र्क है दोनों में ये है कि इस कन्वेंशनल जो रिवायती बैंकिंग है
जी
उसमें बैंकिंग का तमाम सिस्टम, तमाम प्रोडक्ट्स, तमाम उसकी यील्ड्स एंड अर्निंग्स वो पैसे के ऊपर बेस्ड होती हैं।
सही
और इस्लामिक बैंकिंग में ऑन दी अदर हैंड जो जो प्रॉफिट्स हैं, या जिसको आप कहते हैं कि रिबा फ्री मुनाफा है या इंटरेस्ट फ्री मुनाफा है, वो दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स
सही
और विच हैव अंडरलाइंग एसेट्स, एंड दोज अंडरलाइंग एसेट्स इज नॉट जस्ट मनी। तो जैसे अब बैंकिंग को की बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन होता है अक्सर लोगों की, इस्लाम और बैंक क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं, या इस्लामिक बैंकिंग कोई कॉन्सेप्ट है भी, या ये सिर्फ एक एक और सेल्स पिच है।
हाँ, यह नाम तब्दील कर
एग्जैक्टली
दिया गया
सिर्फ
और
नाम।
बाकी सब चीज़ें वही हैं।
एग्जैक्टली तो बैंकिंग का बेसिकली आप देखें, बैंकिंग की प्राइमरी डेफिनेशन ये है कि बैंक इज़ अ कस्टोडियन ऑफ डिपॉजिट्स टू
सही
स्टार्ट ऑफ विद। आई मीन आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, रजवी साहब के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, हम किसी आप जिसको कह लें कि पुरेतमाद इदारे या शख्सियत के पास रखवा देते हैं कि वो महफूज रहेगा।
सही
तो बैंकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर।
सही
तो एज फार एज हिस्ट्री गोज, एज फार एज इस्लामिक हिस्ट्रीज गोज, तो बैंकिंग और जो जो ट्रांजेक्शन जिनके ऊपर इस्लामिक बैंकिंग बेस की गई है दोज वर ऑलवेज देयर।
सही सही। अच्छा शब्बीर रज़वी साहब, आपका भी जो है वो, आप तो लेक्चर भी देते रहते हैं इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर, तो मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को आप ये बताइए कि किस तरह इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट, मसलन मैं एक मिसाल दे देता हूँ, मोर्टगेज, ठीक है, वो अगर कोई मुसलमान मग़रिब में लेना चाहता है तो इस्लामिक बैंक जो अगर ऑफ़र करता है मोर्टगेज, वो किस तरह कमर्शियल हाई स्ट्रीट बैंक से मुख्तलिफ है?
शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। असल में हुसैन, मुश्किल यह है कि भाई बाबर ने जो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट पेश किया, कस्टोडियनशिप का, यानी कि एक किस्म से अमानत, बतौर अमाना पैसा रखा जाता है बैंक के पास, और बैंक जो है वो अमानत में खयानत ना करे, ये देखना पड़ता है। अच्छा, बैंकिंग में एक पुराना हिस्टोरिकल फ्रेज है कि अगर आपको किसी की के डाका डालना या चोरी करना है तो बैंक शुरू कर लें। दिस इज अ ओल्ड बैंकिंग फ्रेज। तो अक्सर कहा जाता है कि बैंकर्स जो है ज्यादातर जो है डाका डालने के लिए
वो
बैंक शुरू
जिसका
कर दें।
जिसका एक अमली मुजाहरा यहाँ 2007-8 में हुआ
एग्जैक्टली
है, जो
एग्जैक्टली
रेस्क्यू किया गया, वो मुझे और आपको टैक्स पेयर्स को पैसा देना पड़ा है उसके।
एब्सोल्युटली
सही
एब्सोल्युटली। तो वो एक अलग इश्यू है जिस पर अगर मौका मिले तो हम बात कर सकते हैं। जहाँ तक आपका सवाल जो है मोगेज का है या कोई लोन फैसिलिटी है, खुसूसन यूके में जो मुसलमान रह रहे हैं, यहाँ पर कई ऑर्गेनाइजेशंस ने स्पेशली बिफोर द फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 2009 से पहले काफ़ी बैंकों ने आइदर कहा जाता है कि होलसेल इस्लामिक बैंक शुरू किए या विद इन कन्वेंशनल बैंकिंग, जैसे एचएसबीसी था यहाँ पर, उन्होंने अमाना एक फैसिलिटी शुरू की थी, उससे जो है मोगेजेस यहाँ पर लोगों को इस्लामिक बेस्ड शरिया कंप्लाइन सॉर्ट ऑफ मोगेज दिए जाते थे। इसी तरह बाकलेस बैंक हुआ, दूसरे मजीद जो भी बड़ा प्लेयर था उन्होंने देखा कि ये एक जो है जैसे भाई ने कहा कि सेल्स पिच मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है कि लफ्ज़ इस्लामी लिख दिया जाए और काम वही किया जाए जो हो रहा है। अच्छा, उसके बरक्स ये देखना पड़ेगा कि आया कि इंट्रेंसिकली यानी कि फंडामेंटली फाउंडेशन क्या है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर अरबिक अल्फाज की बिरयानी बना ली जाए तो वो इस्लामिक प्रोडक्ट नहीं हो जाता, यानी कि किसी को इजारा कह दें, किसी को मुदारबा कह दें, किसी को मुशारेका कह दें, तो सिर्फ अरबी अल्फाज है उसकी बिरयानी बन गई है, मगर उसमें जो है वो फंडामेंटल।
अच्छा, ये भी एक सवाल पैदा होता है, मैं चाहूंगा कि आगे इसे गुफ्तगु में आपसे पूछें, लेकिन अब आ रहा है क्वेश्चन तो मैं उसे जाया नहीं करना चाहता कि इस्लामिक बैंकिंग किस हद तक इस्लामिक है। एक क्वेश्चन तो ये भी आता है कि किस हद तक शरिया कंप्लाइंट है और कौन जो है वो उसे वेरीफाई कर रहा है। मसलन जैसे हलाल प्रोडक्ट्स हैं, हलाल मीट है, उसकी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन के लिए क्या यहाँ पे बॉडीज बनी हुई है, एमसीबी है और उसके अलावा दीगर इदारे मौजूद हैं, तो कौन सा इदारा है जो इन प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करता है। जैसे आपने अभी एचएसबीसी की मिसाल दी, उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए इस्लामिक प्रोडक्ट्स, तो किसने कहा कि भाई ये इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं, यस ये हमारी शरिया से कंप्लाइंट करती हैं। ज़िमनी एक सवाल निकला है, लेकिन मैं चाहूँगा पहले आप पहले सवाल को ज़रा कंप्लीट कर दीजिए, फिर इसका जवाब दीजिए।
देखिए, तो मैंने जैसे कहा कि अक्सर जो है इस्लामिक प्रोवाइडर्स जो है प्रोडक्ट्स को इजारा कहते हैं, मुदारबा मुशारका। अच्छा, जहाँ पर यानी कि उसकी निगाह रखने के लिए, उसको कंप्लाइंट करने के लिए, मोस्ट ऑफ दीज बैंक्स जो हैं उनके यहाँ शरिया कंप्लाइंट बोर्ड होता है। जैसे आप भी फाइनेंस में, बैंकिंग में, आप भी जो है बिजनेस एडवाइजरी वर्क करते हैं, आपको पता है कि यूके में रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बहुत है, यानी कि किसी भी प्रोफेशन में हो तो एक बॉडी होती है जो निगाह रखती है कि ये काम सही हो रहा है या नहीं, और खुसूसन फाइनेंस का बिजनेस जो हद से ज़्यादा रेगुलेटेड है। यहाँ पर एक बॉडी है जो यानी कि देखती है कि बैंक्स क्या कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्राइसिस हुई। तो यानी कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकल इश्यू है जो किसी और वक्त डिस्कस किया जा सकता है। तो इसी तरह से जो है इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए हर बैंक जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवाम तक ले जाता है उनके पास शरिया कंप्लाइंट बोर्ड होता है। अच्छा, मशहूर मारूफ ज़्यादातर जो मुफ्तीज और मौलानाज हैं वो ये शरिया कंप्लाइंट बोर्ड्स पे बैठते हैं, और क्योंकि ज़्यादातर दे आर सऊदी एजुकेटेड उलमा, चाहे जैसे पाकिस्तान में हो तकी उस्मानी साहब हो, उनका बेटा इमरान हो, या शेख याकूब हो बहरेन के, या दूसरे मजीद उलमा जो हैं वो एडवाइस करते हैं कि आया कि आप मार्केट में ले जाना चाह रहे हैं, ये जो है इस्लाम के बेंचमार्क पर होती है या नहीं। यहाँ पर बात जो निकलती है इसमें साथ साथ देखिए हुसैन के यानी कि बिजनेस में जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, मुझे कोई मुफ्ती और मुल्ला की ज़रूरत नहीं है कि शराब के बिजनेस में मैं इन्वेस्ट ना करूँ, गैम्बलिंग के बिजनेस में ना इन्वेस्ट करूँ।
ऑब्वियस बात है,
यानी वो मेरी वालदा ने मुझे सिखाया था बचपन से, मुझे कोई एक मुफ्ती और मुल्ला को जो 100,000 pounds देकर उसका ठप्पा नहीं चाहिए कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी जब आ जाती है सिस्टम में के मोगेजेस, यूके में जो मोगेजेस होते हैं वो एक्चुअली रियल मनी नहीं होती है, दिस इज डिजिटल मनी, दिस इज मनी विच हैज बीन क्रिएटेड, और इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट इसको कहते हैं कि यानी कि मनी क्रिएटेड फॉर नथिंग रियली, उसका कोई एसेट बैकिंग नहीं होती है, जैसा भाई फरमा रहे थे। आप मोगेज लेने जाते हैं, डेट क्रिएशन होती है वो, और बाद में आगे जाकर वही डेट किसी और को बेची जाती है। तो इसी वजह से जो क्राइसिस हमारे यहाँ पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में यूरोप में और वेस्ट में हुई थी वो इसी बिना पे हुई थी कि रियल एसेट वाज मे बी 1 pound मगर आगे जाकर उसको 100 pounds में बेचा गया।
अच्छा, मैं यहीं से एक क्वेश्चन चाहूँगा इकबाल से, बाबर से पूछा जाए, फिर वापस आपकी तरफ आऊँगा शब्बीर भाई, कि अगर इस्लामिक बैंकिंग इन प्लेस होती, जैसे अभी शब्बीर साहब ने तस्करा किया कि जो इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है वो क्या उसे रोका जा सकता था अगर इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स यूके या वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती।
देखिए सर, जो बेसिक डेफिनेशन जहाँ पे हमारी जनरली पब्लिक को जितना पता है इस्लामिक बैंकिंग का और कन्वेंशनल बैंकिंग का, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसके ऊपर बेस करके इसको कन्वेंशनल इस्लामिक, वो है रिबा लव्स,
सही,
विच मीन्स इंटरेस्ट और एक्सेस,
सही।
तो उसकी बेसिकली रिबा इज एनीथिंग विच इज अ कंपनसेशन विदाउट कंसिड्रेशन,
सही,
यानी कि बगैर किसी ट्रांजैक्शन के, बगैर किसी प्रोडक्ट के और बगैर किसी फिजिकल वैल्यू ऑफ एनी एसेट के, उस पैसे की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए।
सही,
तो
ये आप कह रहे हैं कि ये रिवायती बैंकिंग में,
ये रिवायती बैंकिंग,
अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग अगर होती तो वो क्या करते?
एग्जैक्टली, मैं अब जैसे रजवी साहब ने बताया कि एक एसेट एक पाउंड का था, उसको 100 जगह बेचा गया विद अ लिटिल बिट ऑफ एनहांस वैल्यू। इस चीज़ को बोलते थे, जो प्रोडक्ट थे, दिस वाज कॉल्ड कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस व्हिच वर क्रिएटेड हियर। यहाँ पर एक 100,000 pound का घर है, उसके ऊपर एक सिक्योरिटी क्रिएट कर दी गई कि जी ये सिक्योरिटी इस एसेट बैक सिक्योरिटी है। अब वो सिक्योरिटी पूरे यूरोप से घूमती हुई अमेरिका चली गई एंड द अदर वे अराउंड। अब अमेरिका के अंदर जितनी जो हाउसिंग मार्केट थी, जितनी मॉर्गेज मार्केट थी, उसकी अगर 100 rupees की या 100 pound की टोटल एक्चुअल वैल्यू है उन एसेट्स की, रियल वैल्यू है, तो वो बाय वे ऑफ दीज कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस, वो जब यूरोप से और मिडल ईस्ट से घूमते हुए यूके तक आए हैं, तो वही 100 pound या $100 $1,00,000 या $1,00,000 पर।
सही।
और अगर ये चीज़ इस तरह ना क्रिएट की गई होती और वो जो सब प्राइम मॉर्गेजेस जो डिफ़ॉल्ट किए अमेरिका के अंदर, अगर वो डिफ़ॉल्ट किए भी होते, तो लॉस उस पर 100 rupees per 100 का होता। यहाँ पर लॉस 100 rupees per 1000 टाइम मोर हुआ एंड विच वॉज फेल्ट बाई द होल ग्लोबल इकोनमी।
देखें, इसमें तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। शबीब भाई ने वो पीरियड जो है जिसमें सेल्फ सर्टिफाइड मोर्गेजेस होती थी, उन्हें अच्छी तरह देखा होगा, आपने भी उस पीरियड से गुजरे होंगे, तो वो तो एक ओपन चेक था कि जो भी बैंक में जाए और वो कहे कि जी मेरी ये इनकम है, मैं खुद कह रहा हूँ मेरी ये इनकम है, आप मुझे पैसे दे दें, तो वो तो इस हद तक ऑब्वियस, यानी कि उसके अंदर आप कहें कि इरिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कोई अगर ज़्यादा सख्त अल्फाज हो तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है, क्रिमिनल इरिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो कहूँगा कि इस हद तक वो जो है वो इधर लागू रहा। लेकिन सवाल यही है शबीर भाई कि अगर इस्लामिक बैंकिंग हो, उसमें ये सेल्फ सर्टिफाइड प्रोडक्ट मौजूद हो, तो कैसे रुकेगा? मैं आया हूँ, मैंने कहा जी मेरी फ़र्ज करें 50,000 इनकम है, आपने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं हमने एग्री कर लिया, ये रहा लोन, इस्लामिक प्रोडक्ट के थ्रू आपको हमने मॉर्गेज दे दी, तो उसमें भी तो डिफ़ॉल्ट किया जा सकता है।
यहाँ पर बात यही होती है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं यूके में, मसलन उनकी रेस्टोरेंट है, और आपको पता है ज़्यादातर यूके में जो रेस्टोरेंट्स हैं वो मुसलमान चलाते हैं, यानी कि हलाल फूड बेचते हैं। और इस पर जो आपका हलाल गोश्त का सवाल है, तो उस पर एक नुक्ता मैं ज़रा पेश कर दूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, हलाल गोश्त भी जो मार्केट में आता है, काफ़ी रिसर्च हो सकती है, हो चुकी है यहाँ पर, कि हो सकता है 50% से ज़्यादा गैर हलाल है।
सही,
सही। तो वो एक अलग इशू है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज हो बच चुकी है। तो इतने रेगुलेशन के बावजूद भी बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें जो है वो शरई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट बनाना चाहिए होता है, इस वजह से वो बेच देते। अच्छा, तो इसी तरह अगर आप कॉम्प्लेक्स इश्यूज में आए, गोश्त तो एक किस्म से सिंपल प्रोडक्ट भी, अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसमें जो है क्योंकि प्रॉफिट मोटिव रहता है, बैंकर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, वो मैक्सिमम प्रॉफिट इन द शॉर्टेस्ट टाइम बनाना चाहते हैं। तो इस्लामिक बैंकिंग या फाइनेंस में जो कस्टमर, अगर वो सही तौर पर खुद भी इस्लामी नजरिया रखता हो, तो वो ये फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि अगर उनकी इनकम 50,000 नहीं है तो वो 50,000 क्यों बताएगा? तो यहाँ पर पूरे सिस्टम
की, तो फिर मॉरल वैल्यूज भी आ गई, और फिर
अगर इस्लाम मॉरल वैल्यू,
बिल्कुल सही,
असल असल इश्यू जो है ना बैंकिंग।
अच्छा शबीर भाई, हम गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक वक्फे के लिए कहा जा रहा है। खवातीन उस रात यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, देखते रहिए प्रोग्राम फिक्र नजर।
हवा है सवाना دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے مولا یا مولا گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں یا مولا بدل دے میرا رستا دل بدل دے مولا یا مولا سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مولا یا مولا مزہ آ جائے مولا دل بدل دے مولا یا مولا رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر مولا یا مولا سرور ایسا عطا کر دل بدل دے مولا یا مولا خدایا فضل فرما دل بدل دے مولا یا مولا خدایا فضل فرما دل بدل دے
خوش آمدید خواتین و حضرات. وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی شبیر رضوی صاحب سے, اور شبیر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح اگر اسلامک بینکنگ کی پروڈکٹس ہوتی بجائے کنونشنل یا روایتی بینکنگ کے, تو جو بینکنگ کرائسس یہاں ویسٹ میں آیا تھا بہت بڑا, شاید اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا تھا. میں چاہوں گا کہ شبیر صاحب آپ اپنا جو جواب دے رہے تھے آپ اسے مکمل کر لیجیے, کیونکہ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے جو کہ میں بھی سمجھنا چاہوں گا کہ کس طرح اس کرائسس کو, جو کہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اور اگر اسلامک بینکنگ کے تھرو یہ ممکن ہے تو کیوں نہ ہمارے جو ایٹ لیسٹ جو مسلمان مغربی معاشرے میں رہتے ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے اور وہ لوگ دیکھیں اور اسلامک بینکنگ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں.
دیکھیے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنینس یا صرف پروڈکٹس کی ہم جو بات کر رہے تھے, چاہے وہ اجارہ ہو, اجارے کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ بینک کے پاس آپ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے یہ ایک لاکھ پاؤنڈ کی پراپرٹی خریدنی ہے, بینک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے خرید دیتے ہیں مگر آپ ہمیں 150,000 اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیں. اچھا پرابلم جو ہوتا ہے کہ ان کا جو 150,000 جو پروفٹ بیسڈ ہوتا ہے وہ یو کے کے انٹرسٹ ریٹ پر بیسڈ ہوتا ہے.
صحیح.
اوکے, تو وہ اس کو جو ہے پروفٹ مارجن کہتے ہیں یا جو کچھ بھی اس کو وہ اجارہ, اسی وجہ سے رینٹ یعنی کہ اس بائی بیک لیس سورٹ آف فیسیلٹی, یعنی کہ جو 25 سال آپ کا موگج ہوتا ہے اس دوران آپ وہ کرایہ دیتے ہیں, اجارہ جو ہے کرایہ کے طور پر بینک کو دیا جاتا ہے, اور اسی طرح جو ہے جیسا کنونشنل روایتی موگیج ریڈیوس ہوتے جاتا ہے, یہ بھی ریڈیوس ہوتے جاتا ہے. تو باہر سے اگر دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا, مگر مین چیز یہ ہے کہ بینک جو اسلامک موگیج کرتا ہے وہ جو ہے وہ ایسٹ کو آگے اس طرح سے نہیں بیچ سکتا. مثلا یہ کپ ہے, اس کی ویلیو 1 pound ہے, اب میں نے اس کو 1 pound کی بھیج دیا مگر آگے جا کر اس کو کلیکٹرائز کر کے اس کو بڑھا کر قیمت جو ہے 10 pound کی میں نے بھیج دی, مگر ویلیو تو اس کی 1 pound ہی رہے گی نا.
صحیح.
اس کی بھی نہیں. تو اسلامک بینکنگ میں وہ پرمیشن نہیں ہوتی ہے.
صحیح.
وہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ اسلامک لینڈر اس طرح سے آگے پروڈکٹ کو بھیجے. اچھا ایشو جو آتا ہے, اکثر برادران اور یو کے میں خصوصاً رہنے والے مسلمان سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ فری بینکنگ مینس کاسٹ فری بینکنگ. جب بھی کلائنٹ سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں, اور فنی بات یہ ہے کہ میں ریسٹورینٹ کی جو بات کر رہا تھا آپ کو مزاحیہ طور پہ, ایسے ریسٹورینٹ میں وہ شراب بھی بیچتے ہیں, اب آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں اسلامک فائنینس چاہیے. میں پوچھتا ہوں یار شراب بیچتے ہو تو اسلامک فائنینس کی کیا ضرورت ہے تمہیں.
اچھا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شبیر بھائی بابر, میں چاہوں گا کہ وہ تو بہت اچھے طریقے سے شبیر بھائی نے ایکسپلین کر دیا کہ ایک آرٹیفیشل جو ویلیو کریٹ کی جاتی ہے کسی ایسٹ کی وہ اسلامک بینکنگ میں اس کی پرمیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا سادہ لفظوں میں یہ سمجھائیے کہ کوئی بھی بزنس جو ہے چاہے وہ اسلامک بینک ہو چاہے وہ نان اسلامک بینک ہو یا روایتی بینک ہو, ان کا الٹیمیٹ پرپس جو ہے وہ تو پروفٹ میکنگ ہوگا نا, کہ کیونکہ وہ کمرشل بینکس تو ہیں, انہوں نے اپنے ملازمین کے خرچے پورے کرنے ہیں, انہوں نے جو ان کے شیئر ہولڈرز ہیں انہیں بھی کچھ کما کے دینا ہے, جو بلڈنگ ہے جو باقی اوور ہیڈس ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں, تو کسی نہ کسی طرح منافع تو کمانا ہے. تو پھر کس طرح عام اسلامک بینکنگ جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے, کیونکہ جب ان کے پاس بھی اگر کوئی بزنس مین جاتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے اپنے کاروبار کے لیے کچھ قرض چاہیے, جو ہر بزنس مین کو چاہیے ہوتا ہے اپنے بزنس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ایکسپینشن کے لیے ہم سب کو ضرورت پڑتی ہے کبھی نہ کبھی فائنانس کی, تو کس طرح مختلف ہے, یا کیسے اسلامک بینک جو ہے وہ انشور کرتا ہے کہ ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ رہیں؟
جی, سب سے پہلے تو میں ایک بڑی جو ایک کامن مسکنسیپشن ہے اس کو دور کرتا چلوں کہ اسلامک بینکنگ کے اندر قرض کا کانسیپٹ نہیں ہوتا.
صحیح,
اسلام میں قرض کا کانسیپٹ صرف قرض سے ہنسنا کا ہے.
صحیح,
اسلامک بینکنگ پروڈکٹس جو ہیں دے آر بیسیکلی اسلامک فائنینسنگ پروڈکٹس. نہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح اس فائنانس کو سٹرکچر کیا جاتا ہے کہ بینک بھی کچھ کمائے, جس نے اپنے پیسے بینک کے پاس رکھوائے ہیں وہ بھی کچھ کمائے, اور الٹیمیٹلی جو بزنس جو اسلامک فائنینشیل فیسلٹیز لے رہا ہے وہ جو کمائے اس میں سے سب شیئر بھی کریں.
بالکل صحیح.
تو اب جیسے کنونشنل پروڈکٹ آپ لے لیں کہ لیٹس سے ایک ٹرم لون, ایک ریسٹورینٹ کی ایگزامپل جیسے رضوی صاحب دے رہے تھے کہ ایک ریسٹورینٹ والا آتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے لیٹس سے 20,000 pounds کا ایک ٹرم لون چاہیے.
صحیح,
ایک کنونشنل بینک کہے گا کہ جی آپ 20,000 pounds ہم سے لے لیں اور اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ سے 10% ہوگا پر اینم, اور آپ 10% پر اینم کے حساب سے ہمیں انٹرسٹ واپس کر دیں. ٹھیک ہے, ریسٹورینٹ چلتا رہے گا, بینک 10% انٹرسٹ کماتا رہے گا, بیچ میں سے 1.5-2% شاید اپنے ڈپازیٹر کو دیتا رہے گا.
ٹھیک
ہے, آن دا فلپ سائڈ آف اٹ اسلامک بینکنگ کے اندر جب سیم ریسٹورینٹ اونر اپروچز ان اسلامک بینک اور وہ کہتا ہے جی مجھے 10,000 pounds یا 20,000 pounds چاہیے اور اپنے ریسٹورینٹ کے لیے کچھ ایکسپینشن کرنے کے لیے, ورکنگ کیپٹل کے لیے, تو سنس اسلامک بینکنگ از ناٹ بیسڈ آن منی, اٹس بیسڈ آن ریئل پروڈکٹس, ریئل گڈس جن کی ریئل ویلیو, تو سب سے پہلا سوال تو اسلامک بینکر اسے یہ کرے گا کہ آپ کو کس پرپز کے لیے پیسے چاہیے. اب اگر وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ایکسپینشن کرنی ہے اپنے ریسٹورینٹ میں, سے مجھے 10,000 فرنیچر پہ فکسچر پہ لگانا ہے اور 10,000 pounds مجھے ریفریجریٹر ایڈ کرنے یا فریزر ایڈ کرنے, اسلامک بینکنگ کے اندر پھر پروڈکٹس ہیں ڈفرینٹ سچویشنس, ڈفرینٹ ٹرانزیکشنس کے لیے ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں. لیٹس سے جیسے اجارہ کا پروڈکٹ ابھی رضوی صاحب نے مینشن کیا, اجارہ از بیسکلی آپریٹنگ لیز.
صحیح,
اگر آپ اس کو کنونشنل بینکنگ کی کوئی ایگزامپل میں کسی کوئی دوسرے لفظوں میں آپریٹنگ لیز ہے, وہ کہے گا جی آپ کا فریزر میں 10,000 کا لیتا ہوں, آج بینک پرچیز کرے گا, اٹ وز بین انوائس ٹو دا بینک, بینک ول پے فار اٹ, اور آپ کو ہم یہ اجارہ پہ کرائے پہ دے دیں گے. اب وہ کرائے کی ویلیو کیسے ڈیفائن ہوگی کہ آپ نے منتھلی کرایہ کتنا دینا ہے اس کا؟
صحیح,
ٹھیک ہے جی. اب اس کے مختلف طریقے ہو سکتے, ہم لوگ مینلی جو مینلی اسلامک بینکس یوز کرتے ہیں وہ جیسے رضوی صاحب نے بتایا کہ وہ انٹرسٹ جس طرح کیلکولیٹ ہوتا ہے انہی بیسس پہ ایک پروفٹ کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے ان کو بتاتے ہیں. لیٹس سے یہ فریزر 10,000 کا ہے, تو ہم آپ نے ہمیں اس کا بینک کو کسٹمر نے 10,000 کی بجائے 11,000 pounds دینے اوور اے پیریڈ آف 2-3 years, اور لیٹس سے اگر 10% اوور اے پیریڈ آف ایئر, تو اس کی اس حساب سے منتھلی انسٹالمنٹ سیٹ ہو جائے.
ٹھیک ہے,
باقی جو کوئی اور پروڈکٹ اس نے کچھ اور مٹیریل لینا ہے,
ملکیت جو ہے اگر آپ نے اسی ریفریجریٹر کے پہ ہی اگر ہم رہیں, تو اس کی ملکیت بعد میں کس کی ہو جائے گی 10 سال کے بعد؟
ملکیت 10 سال کے بعد, اب جیسے اجارہ کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے, اجارہ کی جو سارا موڈس اپرینڈی ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ کرائے پہ رہے گا فور اے ایئر 10,000 pounds, آپ کو ہم 11,000 pounds ٹوٹل کرایہ واپس لیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا پیریڈ آپ کو سے ایک اس کی تھرو اوے ویلیو کے لیے کے ساتھ یا ایک اس کی اینڈ آف کانٹریکٹ ویلیو 1 pound پہ ہم آپ کو یہ دے دیں گے, جس طرح آپریٹنگ لیز چلتی ہے نارمل. تو اس کے اندر کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے کہ جو شریعہ کمپلائنٹ نہ ہو.
صحیح,
سیدھی سیدھی کرائے کی ٹرانزیکشن ہے.
صحیح. اچھا شبیر رضوی صاحب, دیکھنے میں آیا ریسنٹلی یو کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ کافی انکریج کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ کو, گورنمنٹ لیول پہ انکریج کیا جا رہا ہے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں بینگ اے مسلم جو ہم مغربی ممالک میں رہ رہے ہیں, ہمیں تو خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟
دیکھیں یہاں پر جہاں تک اسلامک مورگیجز کا تعلق تھا, پریویس گورنمنٹ الیکشن سے پہلے لیبر گورنمنٹ جو تھی, یہاں پر اسلامک مورگیج جب لیا جاتا تھا دو دشواریاں ہوتی تھیں مورگیج لینے والے کو, ایک جو ہے اس کو کیا کہنا چاہیے, انمپلائڈ اگر ہو جائے تو اس کو وہ انٹرسٹ جو کنونشنل مورگیجز کو ملتا ہے وہ نہیں ملتا تھا, یعنی کہ کیونکہ رینٹ ہوتا تھا, رینٹ کا کوئی تو وہ گورنمنٹ نے لیبر گورنمنٹ نے ختم کر دیا تھا. सेकेंडली जो है स्टैम्प ड्यूटी जो कहलाई जाती है, यानी कि ट्रांजैक्शन पर जो कॉस्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी पे देनी जाती है, दो दफ़ा देनी पड़ती थी। एक जो पहले खरीदा जाता था, फिर सेकेंड जब इजारा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता था क्योंकि ट्रांसफर होता था उस वक्त दोबारा, सो दे यानी कि ट्वाइस जो है मुस्लिम कस्टमर जो है लूज आउट करता था। तो उसको जो है गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, लेबर गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था कि सिमिलर हो जाए कॉस्ट वाइज। अच्छा, ज़्यादातर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इस्लामिक मोर्गेजेस हैं कंपेयर टू कन्वेंशनल मोर्गेजेस काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, नियरली 2% का फ़र्क आ जाता है अगर आप एनालिसिस करें। तो मेरा सवाल यही होता है कि मुसलमान होने की बिना पर पहले ही दुश्वारी है और फिर फाइनेंशियल दुश्वारियाँ भी उस पर लागू की जाएँ क्योंकि इस्लामी। अच्छा, उलमा से अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि ब्रदर क्योंकि आपको हलाल गोश्त खाना है तो हलाल गोश्त महंगा मिलता है तो हलाल गोश्त खाना वाजिब है, इसी तरह इस्लामिक बैंकिंग भी क्योंकि महंगी है मगर क्योंकि आपको करना जरूरी है तो इस वजह से करना चाहिए। आई डोंट बाय दैट।
इस पे बाबर से क्विकली लेंगे, लेकिन यूके जो गवर्नमेंट है आप क्या समझते हैं वो क्यों से
देखिये, जहां तक यूके का ताल्लुक है, ब्रिटेन जैसे शुरू में मैं कह रहा था कि यहाँ की इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन सर्विस और ज़्यादातर बैंकिंग, 15% ऑफ द इनकम ऑफ यूके कम्स फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो और यहाँ पर वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर दुनिया भर का करप्शन का पैसा आता है, चाहे वो रशिया के ओलिगार्क्स हों, चाहे वो डिवेलपिंग कंट्रीज़ के रूलर्स हों। मुबारक जब पावर में था उसका बिलियंस ऑफ पाउंड्स यहाँ पर थे, गद्दाफी जब था उसका, जब वो पावर में होते हैं रेगुलेटर और कंप्लायंस वाले कुछ नहीं कहते, जब वो पावर से हट जाते हैं कहते हैं ये नाजायज पैसा था, तो ब्रिटिश हुकूमत ले लेती है। और एक और चीज जो खूबी की है, हर एक को यहाँ पर इजाजत है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अच्छा, प्रॉपर्टी यूके से मूव नहीं की जाती, नहीं की जा सकती, तो रईस पैसे वाले यूके में आके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कल वो पावर में नहीं होते प्रॉपर्टी यहीं पर ही रहती है, यूके का फायदा होता। और आज ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्कशन किया था कि ये जो करप्शन का पैसा यूके में आ रहा है
उस खरीदने की जगह नहीं देंगे,
तो यानी कि डिबेट हो रही है, बट आई डोंट थिंक दे विल बी। तो इसी तरह इस्लामिक बैंकिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो राजी है क्योंकि पैसा आएगा,
सही, और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है तो जाहिर सी बात है कि सर्विस प्रोवाइड हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बाबर इकबाल साहब, शब्बीर रजवी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होने का। ख़वातीनो हज़रात, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।